फैक्ट्री का फ्लोर छोड़कर आर्यन तेज कदमों से ऊपर ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ था, जबड़ा कसा हुआ और आंखों में वही सख्ती। केबिन का दरवाजा उसने हल्के से धक्का देकर खोला। अंदर अदिति अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। स्क्रीन पर नए टेक्सटाइल डिजाइन खुले थे। रंगों का कॉम्बिनेशन, पैटर्न की बारीकियां, वो पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने नज़र उठाई और जैसे ही आर्यन को देखा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या हुआ, उसने तुरंत पूछा। आर्यन ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, बस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला, नीचे एक वर्कर था, काम छोड़कर फ़ोन पर लगा हुआ। अदिति ध्यान से सुन रही थी। आर्यन ने आगे कहा, मैंने टोका तो उल्टा मुझे ही बोलने लगा, कहता है तुम विश्वनाथ सर नहीं हो, तुम्हें कोई हक नहीं। अदिति की भौहें सिकुड़ गईं। फिर आर्यन की आवाज़ थोड़ी और भारी हो गई। फिर उसने कहा, वो यूनियन लीडर है और मुझे धमकी देने लगा, एक पल का ठहराओ। फिर उसने सीधा कहा, मैंने थप्पड़ मार दिया। केबिन में सन्नाटा छा गया। अदिति कुछ सेकंड तक उसे देखती रही जैसे समझ ही नहीं पा रही हो। आर्यन, ये तो गड़बड़ हो गई, उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा। तुम जानते हो ना यूनियन वाले कितने जल्दी मुद्दा बना देते हैं। वो कुर्सी से उठकर उसके पास आई। अगर उसने बात बढ़ा दी तो स्ट्राइक हो सकती है या मीडिया तक भी जा सकता है, उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक ठंडी सी सख्ती। जो गलत है वो गलत है, उसने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा। काम के पैसे लेता है तो काम करेगा, ये यूनियन का नाम लेकर सिर पर चढ़ने की आदत मैं नहीं चलने दूंगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी, कुर्सी पर बैठा हुआ भी जैसे सामने खड़ा हो, कंधे सीधे, नज़रें टिकी हुई और आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक। अदिति ने गहरी सांस ली। मैं समझती हूँ, लेकिन हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कभी कभी दिमाग से भी खेलना पड़ता है, उसने थोड़ा झुककर कहा। हमें पहले पता करना होगा वो आदमी अकेला है या पीछे पूरा ग्रुप है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हल्का सा झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही बात थी, ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ हवेली, गाड़ी आकर रुकी, विश्वनाथ और अक्षरा अंदर आए। रत्ना देवी पहले से ही हॉल में बैठी थीं, जैसे इंतजार कर रही हों। क्या कहा डॉक्टर ने, उन्होंने तुरंत पूछा। उनकी नज़र सीधा अक्षरा के पेट पर गई, फिर चेहरे पर। अक्षरा ने हल्की सी मुस्कान लाई और धीमे से बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। एक पल के लिए उसने रुककर विश्वनाथ की तरफ देखा, फिर बात को थोड़ा बढ़ाते हुए कहा, बस डॉक्टर ने कहा है केस थोड़ा सेंसिटिव है। रत्ना देवी की चिंता बढ़ गई। मतलब, अक्षरा ने गहरी सांस ली और अब पूरी तरह अपने नाटक में उतर गई। मतलब बहुत ख्याल रखना होगा, जरा सी लापरवाही भी ठीक नहीं। उसने धीरे से पेट पर हाथ रखा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं और हर वक्त किसी का साथ, उसने ये कहते हुए नजरें विश्वनाथ पर टिका दी। रत्ना देवी ने तुरंत कहा, अरे तो ख्याल रखा जाएगा बेटा, तुम बस आराम करो। अक्षरा ने सिर हिलाया लेकिन रुकने वाली नहीं थी। डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि अकेले नहीं रहना चाहिए और जो भी चाहिए हो तुरंत मिलना चाहिए। उसकी आवाज में अब साफ इशारा था, जिम्मेदारी किस पर डालनी है। विश्वनाथ पूरे समय चुप खड़ा था लेकिन उसका चेहरा पढ़ना आसान नहीं था। ना उसने अक्षरा को रोका, ना उसकी बातों को काटा, बस सुनता रहा। और फिर बिना कुछ कहे उसने घड़ी देखी, मुझे ऑफिस जाना है, उसने सीधा कहा। अक्षरा एक पल के लिए चौंकी लेकिन तुरंत संभल गई। ठीक है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम भी जरूरी है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी खीज जरूर उभरी जो सिर्फ एक पल के लिए थी। विश्वनाथ मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल धीमी नहीं थी, ना जल्दी में, बस सीधी और ठोस, कंधे सीधे, चेहरा सख्त और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे वो सिर्फ ऑफिस नहीं जा रहा बल्कि कुछ सोचकर जा रहा हो, कुछ तय करके। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पल को रुका, पीछे मुड़कर अक्षरा की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी, पेट पर हाथ रखे, बिल्कुल वैसी ही जैसी एक परफेक्ट प्रेग्नेंट औरत दिखती है। लेकिन विश्वनाथ की नजरों में इस बार सिर्फ देखना नहीं था, परखना भी था। एक सेकंड, दो सेकंड, फिर उसने नजरें हटा ली और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। दरवाजा बंद। हॉल में अक्षरा, रत्ना देवी और एक ऐसा सच जो अभी सामने नहीं आया था लेकिन जिसकी आहट शुरू हो चुकी थी। ऑफिस का माहौल अचानक बदल गया था। नीचे फैक्ट्री फ्लोर पर मशीनों की आवाज जो हमेशा गूंजती रहती थी आज लगभग बंद थी। काम रुक चुका था। विश्वनाथ अपने केबिन में था, फाइल्स देख रहा था, लेकिन तभी दरवाजा तेजी से खुला। मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया। सर, नीचे प्रॉब्लम हो गई है, विश्वनाथ ने नजर उठाई। क्या हुआ? यूनियन वाले हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ धीरे धीरे कुर्सी से सीधा होकर बैठ गया। क्यों? मैनेजर ने गहरी सांस ली। कह रहे हैं आर्यन सर ने उनके यूनियन लीडर को मारा है। विश्वनाथ की भौहें सिकुड़ गईं। क्या? उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। जी सर, नीचे सब काम बंद कर दिया है और उनकी साफ मांग है, मैनेजर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, या तो आर्यन सर को ऑफिस से बाहर किया जाए वरना कोई काम नहीं होगा। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी नजर टेबल पर टिक गई, जैसे वो तेजी से सब जोड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कंधे सख्त, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में ठंडी सख्ती। ऐसे कैसे? उसने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा। मैनेजर चुप। कोई भी आए और मेरे लोगों पर उंगली उठाए और मैं बिना सुने फैसला कर दूं? उसने सीधा मैनेजर की तरफ देखा। नहीं, एक शब्द लेकिन बहुत साफ, मैं खुद देखूंगा। उसने कदम आगे बढ़ाए। मुझे वक्त दो। उसकी आवाज में अब आदेश था, ना गुस्सा ना जल्दबाजी, बस कंट्रोल। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। जी सर। विश्वनाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वही ठहराव था लेकिन हर कदम बता रहा था अब मामला उसके हाथ में है। नीचे यूनियन, आर्यन और पूरी फैक्ट्री एक टकराव के मोड़ पर खड़ी थी और अब ये टकराव सीधा विश्वनाथ से होने वाला था, जहां फैसला अभी बाकी था।